So I just want to start with a story
और मैं कहानी
which was
के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ
which you read in the Gospels
जो हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं।
in Luke chapter 22
लुका लुका इसके 22 अध्याय में
verse 24 we read of a dispute between the disciples.
और लुका 22 24 में हम शिष्यों के बीच एक अनबन के बारे में पढ़ते हैं।
It says there arose also a dispute among them as to which one of them was regarded to be greatest.
अनबन नहीं, एक वाद विवाद वहां लिखा है, उसमें ये उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। इंग्लिश में लिखा है सबसे महान कौन है।
So the disciples had a argument between themselves.
और जो शिष्य थे उनके बीच में ही उनकी एक विवाद हो रहा था।
So just for the sake of children, I'll just explain that sometimes the disciples they have come to Jesus with a different period of time.
और बच्चों के लिए मैं यह समझाना चाहता हूं कि जो शिष्य थे वो एक अलग समय के टाइम यीशु के पास गए थे।
For example, Jesus might have first called Andrew.
उदाहरण के तौर पर शायद सबसे पहले यीशु मसीह ने आंद्रिया को बुलाया था
And then Andrew called his brother Peter.
और फिर आंद्रिया जो था उसने अपने भाई पतरस को बुलाया।
But when Jesus took three people to pray with him or wherever he took Peter, James and John.
पर जब यीशु मसीह तीन लोगों के साथ अपने अपने साथ प्रार्थना करने के लिए ले जाता था या कहीं भी जब उनको अलग से ले जाता था तो वो हमेशा पतरस याकूब और यूहन्ना को लेकर जाता था।
And there are some miracles which he did which some disciples might have helped him. I like doing some task for him.
और ऐसे भी कुछ चमत्कार रहे होंगे जहां उसके कुछ विशेष शिष्यों ने उसकी सहायता की थी, जैसे उसने कुछ कहा होगा करने के लिए उन्होंने वो किया होगा।
So there are so many incidents which happened. So the disciples had a dispute that I am the greatest, or everybody had a feeling that I am great, I am great.
और क्योंकि इतनी अलग अलग घटनाएं हुई थी इस वजह से उनके बीच में एक विवाद था कि सबसे महान मैं ही हूं, और इसलिए वो एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे, नहीं मैं महान हूं, दूसरा कोई कहता था नहीं मैं महान हूं।
So sometimes we can also have in our mind that I am the important person in the church.
और कभी कभी हमारे भी मन में ये बात हो सकती है कि कलीसिया में मैं मुख्य व्यक्ति हूं,
Or I am somebody little important, like I am respected person.
या फिर मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो दूसरों के द्वारा आदर प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है।
And what Jesus said is that in verse 26, but the one who is the greatest among you must become the smallest or the youngest. And the leader like the servant.
और 26 वचन में यीशु ने कहा, परंतु तुम ऐसा ना होना, वरन जो तुम में बड़ा या महान है वो छोटे के समान और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने।
And in Matthew 18,
और मत्ती 18 में
verse 1,
उसके पहले वचन में
the disciples again had this question, who is the greatest?
शिष्यों के सामने फिर एक बार यही प्रश्न था कि सबसे महान सबसे बड़ा कौन है।
But they were asking, who is the greatest in heaven?
पर अब वो पूछ रहे थे स्वर्ग में सबसे बड़ा कौन है।
So their mind was like, even if I go to heaven, I should be the one everybody will say that I am the greatest.
और उनका मन यहां लगा हुआ था कि अगर मैं स्वर्ग भी चले जाऊं तो मुझे सबसे महान होना है और सब लोगों को यही कहना चाहिए कि मैं सबसे महान हूं।
So they wanted to be somebody, everybody should give attention to me, I am the greatest.
और वे चाहते थे कि सब लोग मुझ पर ध्यान लगाए क्योंकि मैं सबसे महान हूं।
So then Jesus wanted to explain it, then Jesus called a child in their midst.
और जब यीशु उनको ये समझाना चाहता था तो यीशु ने उनके बीच में एक छोटे बच्चे को बालक को बुलाया।
And he put the child in before them and he said, whoever is not converted like this child, he will not even go to heaven.
और उस बालक को उनके बीच में रखकर उसने कहा, जब तक कि कोई इस बालक के समान तुम लोग न फिर कर इस बालक के समान नहीं बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे।
See, a child is not very much interested in being the greatest.
जब कोई बच्चा या कोई बालक उसकी दिलचस्पी उसकी रुचि इसमें नहीं होती कि वो कोई बड़ा या महान व्यक्ति बने।
So as long as I am interested in becoming the greatest or the most important person,
जब तक कि मेरी दिलचस्पी यही है कि मैं सबसे महान सबसे बड़ा व्यक्ति बनूं,
I cannot enter the kingdom of God.
फिर मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता।
And I cannot understand what the things of the kingdom of God, denying myself, taking up the cross. I cannot understand anything.
और स्वर्ग के राज्य की जो बातें हैं कि क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करना, इनमें से किसी भी बात को मैं समझ ही नहीं पाऊंगा.
I cannot understand what is the new covenant. I cannot understand anything.
नई वाचा क्या है? ऐसा कुछ भी मैं नहीं समझ पाऊंगा.
Because my mind is set on, I should be given importance.
क्योंकि मेरा मन यही लगा है कि मुझे मुख्य स्थान, मुझे महत्व दिया जाना चाहिए.
So to teach that Jesus did lot of things with his disciples, but the disciples' eyes were not opened until they received the Holy Spirit.
और ये सिखाने के लिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ कई बातें की, पर शिष्यों की आंखें तब तक नहीं खुली जब तक वे पवित्र आत्मा से नहीं भर गए.
So in John chapter 13, verse 4 to 7, we read of Jesus washing the disciples' feet.
यूहन्ना 13 उसके 4 से 7 वचनों में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के पांव धोता है.
And in verse 7, Jesus says, "What I do, you do not realize now, but you will understand hereafter."
और सातवें वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, "जो मैं करता हूँ, तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा."
Then in verse 13, he says, "You call me teacher and Lord, and you are right, for so am I. So am."
और 13 वचन में वो कहता है, "तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ."
If I then, the Lord and the teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet.
14 वचन, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए.
For I gave you an example that you also should do as I did to you.
क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो.
So I should be having that spirit inside me all the time.
और मेरे अंदर ये आत्मा निरंतर होनी चाहिए.
So maybe when we came to the church.
और शायद जब हमने शुरुआत की, जब पहले दिन हम कलीसिया में आए थे.
We must have thought of ourselves as the smallest person in the church.
हमने अपने आप के विषय में ये सोचा होगा कि हम कलीसिया में सबसे कनिष्ठ, सबसे छोटे व्यक्ति हैं.
And we must be ready to do so many things because we felt that I am not somebody very great. I'm just a humble person. I'm just a small person.
और तब हम कलीसिया में कई बातें करने के लिए तैयार थे क्योंकि हम सोचते थे कि हाँ, मैं कलीसिया में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक छोटा, एक नम्र व्यक्ति हूँ.
But after some time, we can have a sense of importance that I am somebody important now. I should be respected.
पर कुछ समय बाद हमारे अंदर ये एक महत्व पूर्ण होने की भावना आती है और हम सोचने लगते, नहीं, अब मैं थोड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया हूँ, मुझे आदर मिलना चाहिए.
And this does not come in like in our words, but in our thoughts.
और ये जो रवैया है, ये हमारे शब्दों से नहीं प्रकट होता, बल्कि ये सारी चीजें हमारे विचारों में आती हैं.
So we have to constantly look at Jesus and receive that meekness and gentleness from him.
और इसलिए हमें निरंतर यीशु की ओर देखना है और उससे उस नम्रता को, उस दीनता को सीखना है.
He should be the hero in our life.
हमारे जीवन का हीरो, हमारे जीवन का नायक यीशु होना चाहिए.
Not any other people who just project themselves or they show themselves anywhere.
या कोई दूसरे लोग नहीं जो अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को ज्यादा सामने दिखाना पसंद करते हैं.
It should not just be in the church. I can act humble in the church.
और केवल कलीसिया में नहीं, कलीसिया में शायद मैं नम्र होने का नाटक कर सकता हूँ.
But the test comes in my house. Am I ready to humble myself?
पर जो इस बात की परीक्षा है, वो मेरे घर में होती है. क्या मैं अपने घर में अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार हूँ?
When I'm given something to do, am I having that spirit of Christ at home that I'm ready to wash the disciples' feet there? That I see see Jesus in that situation.
अगर मुझे वहां कुछ करने के लिए कहा जाए या दिया जाए, तो क्या मैं वहां तैयार हूँ यीशु की तरह शिष्यों के पांव धोने के लिए उस जगह में, उस परिस्थिति में?
Or am I just murmuring and complaining in that situation?
या मैं केवल शिकायत कर रहा हूँ, कुड़कुड़ा रहा हूँ उस परिस्थिति में?
So in all these situations, we can do many things as external things without the nature of Christ inside.
इन सारे परिस्थितियों में हम बाहरी तौर पर कई बातें कर सकते हैं, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर न होते हुए भी.
But Jesus did not come us to just do a whitewash outside.
पर यीशु मसीह केवल हमें बाहर से चुना लगाकर सफेद करने के लिए नहीं आया है.
He wants us to have humility inside our hearts.
वो चाहता है कि हमारे हृदयों में अंदर से नम्रता हो।
सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, सम पीपल हु बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर इन देयर ओन आईज.
और इसके दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो अपने ही आंखों में, अपने ही नजरों में बड़ा और बड़ा और बड़े होते जाते हैं,
एंड सम पीपल हु आर इन द चर्च हु बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर इन देयर ओन आईज.
और कलीसिया में कुछ और लोग होते हैं जो अपने ही नजरों में कम कम और कम होते जाते हैं।
इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट फीलिंग लो सेल्फ एस्टीम और समथिंग.
और यहां अपने आप के विषय में कम महसूस करना या इस विषय में बात नहीं की गई
There
है।
is a lot of difference between low self-esteem and genuine humility.
और जो हमारा एक खुद के बारे में जो सोच होती है, या जिसको इंग्लिश में सेल्फ एस्टीम कहा जाता है, आत्मसम्मान, यहाँ उसके विषय में बात नहीं कर रहे, उसमें और नम्रता में बहुत अंतर है।
Low self-esteem is I am just condemning myself and I am saying I am good for nothing and I am just useless person and I am just saying I am very small that way.
और बहुत कम आत्मसम्मान होना या सेल्फ एस्टीम कम होना, इसका ये मतलब है कि मैं बस ये कहता हूं कि नहीं, मैं तो किसी काम का नहीं, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मैं अपने आप को दोष लगाता रहता हूं, और ये सारी बातें।
But the real humility is I look at who God is and how holy He is and I receive that humility in my heart and I see that I am nothing before God.
पर सच्ची नम्रता यह है कि मैं परमेश्वर को देखता हूं कि वो कौन है, और फिर मैं देखता हूं कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, और उस नम्रता को मैं अपने हृदय में प्राप्त करता हूं।
And I see that whatever I received in my life is only because of Him. There is nothing good in me.
और मैं इस बात को देख पाता हूं कि जो कुछ मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है वो उसकी ओर से है, और मैंने अपने आप से कुछ नहीं हासिल किया है।
And to generate that humility in our hearts, God has to take us through many many crushing experiences in our life.
और इस नम्रता को हमारे जीवन में उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर को हमें कई कुचले जाने वाले प्रक्रियाओं से हमें लेकर जाना होता है।
And in that situation, if I humble myself under His hands, then I will become humble.
और उस परिस्थिति में उसके हाथ के नीचे अगर मैं अपने आप को नम्र करूं, तब मैं नम्र बनूंगा।
And it says in 1 Peter 5, I think it says, humble yourself under the mighty hand of God.
और पहला पत्रस इसके 5वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, या अपने आप को नम्र करो।
So in other words, God is doing something in your heart in this difficult situation. So just submit yourself to God for doing His work in your heart.
दूसरे शब्दों में, इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर तुम्हारे हृदय में कुछ काम कर रहा है, इसलिए अपने आप को आधीन कर लो कि उस वो कार्य पूरा हो जाए।
Yeah, so we see that work in the life of Apostle Paul.
और ये काम हम प्रेरित पौलुस के जीवन में भी देखते हैं।
See, when he was called, we know that he was very educated and very influential person.
जब पौलुस को बुलाया गया था, उसकी बुलाहट हुई थी, हम जानते हैं कि वो बहुत ही एक प्रभावी व्यक्ति था, अच्छा पढ़ा लिखा वो व्यक्ति था,
Very intelligent and very wealthy also.
वो बहुत बुद्धिमान था और बहुत धनवान भी था।
So as a natural tendency, he must have been very proud also.
और ये एक उसका स्वाभाविक रवैया रहा होगा कि वो बहुत घमंडी रहा होगा।
And that's why God sent him through various trials in his life so that he makes him really dependent and yielding to God in every situation.
इसी वजह से परमेश्वर उसे कई परीक्षाओं से ले गया, ताकि उसको अलग अलग चीजों में परमेश्वर के अधीन होना पड़ा।
And in 2 Corinthians chapter 1,
और दूसरा कुरिन्थ इसके पहले अध्याय में
in verse 8 and 9,
उसके 8 और 9 वचन में
He talks about it that in the last part of verse 8 that we were burdened excessively beyond our strength so that we despaired even of life. And then
और
verse 9, yeah.
8वें वचन के अंतिम भाग में वो कहता है, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे।
Indeed, we had the sentence of death within ourselves so that we would not trust in ourselves but in God who raises the dead.
वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखे वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है।
So Paul is saying the situation was so tough that I had no option to say that God, I trust only in you. Only you can help me in this situation.
और पॉलस कह रहा है कि परिस्थिति इतनी ज्यादा कठिन हो गई थी कि पॉलस को कहना पड़ा कि प्रभु मैं केवल तुझ में भरोसा रखता हूँ, तू ही मुझे इस परिस्थिति में सहायता कर सकता है।
So not once or twice, but with many such situations, Paul was led and he became a humble person.
और एक या दो बार नहीं, पर कई बार पॉलस ऐसे परिस्थितियों में प्रभु उसे ले गया और तब पॉलस नम्र हुआ।
In 2 Corinthians chapter 2, 14 and 15, we read this.
दूसरा कुरिन्थ दूसरा अध्याय उसके 14 और 15 वचन में हम ये पढ़ते हैं।
But thanks be to God, who always leads us in triumph and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place.
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिया लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है।
So we all want the sweet aroma of Jesus to come out from our life.
और हम सब चाहते हैं कि यीशु मसीह की मीठी सुगंध हमारे जीवन में से आए।
That the life of Jesus and the humility of Jesus should come from our hearts, we are really eager for that.
कि यीशु मसीह की नम्रता और यीशु मसीह का जो जीवन है वो हमारे हृदयों से प्रकट हो, ये हम सबकी इच्छा चाहत होती है।
But for that, my self-life should be crushed in every situation.
पर इसके लिए हर परिस्थिति में मेरा स्वयं का जो जीवन है वो कुचला जाना चाहिए।
That means in every situation, when I am provoked, there is something of the self which comes out.
इसका मतलब मेरे जीवन के हर परिस्थिति में जहां मेरा स्वयं उकसाया जाता है वहां मेरे स्वयं से कोई प्रतिक्रिया बाहर आती है।
And in that situation, if I allow myself to die, I say that I will not react in the way I want.
और उस परिस्थिति में अगर मैं अपने स्वयं को मरने दूंगा और मैं कहूंगा कि मैं जैसे चाहता हूं वैसे प्रतिक्रिया मैं नहीं देने वाला।
And I ask the Holy Spirit to create that life in me, that the real life of Jesus might be manifest.
और मैं पवित्र आत्मा से मांगता हूं कि वो जीवन मुझ में उत्पन्न करे ताकि यीशु मसीह का सही जीवन मुझसे प्रकट हो।
Only then the genuine life will come out.
तब ही वो वास्तविक सच्चा जीवन बाहर आएगा।
Otherwise, might be I'll keep quiet, but in my heart I'll be constantly meditating and like we sang in that song.
नहीं तो शायद मैं बाहरी तौर पर चुप्पी साधूंगा पर मेरे हृदय में बार बार उन्हीं विचारों के विषय में मैं सोचता रहूंगा।
Like we sang that song, there is no revengeful thought, there is no malicious thoughts in my heart, there is nothing of self-pity in my heart. I have crucified it with Christ.
जैसे हमने उस गीत में गाया कि मेरे हृदय में कोई भी बदले की भावना नहीं है, कोई भी बैर भावना नहीं है और कोई भी एक दूसरे के बारे में गलत सोच नहीं है, उन सारी चीजों को मैंने मसीह के साथ क्रूसित किया है।
Those are all the negative things.
वो सारी नकारात्मक बातें हुई।
But the life, resurrection life, we die because we know that we believe that the resurrection life will come.
पर फिर यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन जो है, हम मरते ही इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन हमसे आएगा।
If we don't believe that, it will just be a depressing thing to die.
अगर हम इसमें विश्वास नहीं करेंगे तो फिर मरना एक बहुत ही दुख की बात हो जाएगी।
If we don't believe that the sweet aroma of Christ will be manifest from my life, just dying is very depressing.
अगर हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह की वो जो सुगंध है वो मेरे जीवन से प्रकट होने वाली है, फिर केवल मरना ये बहुत ही दुख की बात महसूस होती है।
In 2 Corinthians chapter 4,
दूसरा कुरिन्थ इसके चौथे अध्याय में
from verse 5 read,
पांच वचन से आगे हम पढ़ते हैं,
For we do not preach ourselves but Christ Jesus as Lord and ourselves as bond servants for Jesus sake.
क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं।
So Paul was very careful that whenever he preached, he should not be projecting his own self.
और पौलुस को बड़ा ध्यान रहता था कि जब कभी वो प्रचार कर रहा है तो वो अपने आप को प्रदर्शित न करे।
So he says that sometimes I would be with much trembling and fear when I stand.
और वो कहता है कि जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा होता था तो बहुत डर कर और कांप कर मैं प्रचार करता था।
It is not because trembling is not because he is like we have crowd fear or standing before public speaking or something like that.
और उसका जो डरना कांपना था वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो भीड़ से डरता था और सार्वजनिक तौर पर बात करने के लिए उसको डर लगता था।
But his fear that when I stand, I will just start projecting my own intelligence. I start showing how smart I am. I will show something of that. सो ही वाज फियरफुल ऑफ दैट.
पर उसको ये डर था कि अगर मैं लोगों के सामने खड़ा होता हूं तो मेरे ही बुद्धिमानी से, मेरे चतुराई से मैं कुछ लोगों को कहना चाहूंगा, प्रदर्शित करना चाहूंगा.
सो दैट इज व्हाई गॉड लेड हिम थ्रू सो मेनी ट्रायल्स इन हिज लाइफ.
और इसी वजह से परमेश्वर उसके जीवन में उसे भिन्न भिन्न परीक्षाओं से लेकर गया.
इन वर्स 6 एंड 7 वी रीड, फॉर गॉड हु सेड लाइट शैल शाइन आउट ऑफ डार्कनेस इज द वन हु हैज शोन इन आवर हार्ट्स टू गिव द लाइट ऑफ द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द फेस ऑफ क्राइस्ट.
और छठे और सातवें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो.
सो ही वाज सेइंग दैट गॉड गेव द लाइट ऑफ जीसस इन आवर हार्ट्स.
और वो कह रहा था कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के ज्योति को हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में दिया.
दैट मींस ही कुड सी जीसस वेरी क्लियरली, द फेस ऑफ जीसस वेरी क्लियरली.
इसका मतलब वो यीशु मसीह के चेहरे को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था.
एंड देन इट सेज वी हैव दिस ट्रेजर इन द अर्थन वेसल्स.
और फिर वो कहता है हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में है.
सो दैट द सरपासिंग ग्रेटनेस ऑफ द पावर विल बी ऑफ गॉड एंड नॉट ऑफ आवरसेल्व्स.
ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे.
एंड देन इट सेज वी आर एफ्लिक्टेड इन एवरी वे बट नॉट क्रश्ड, परप्लेक्स्ड बट नॉट डिस्पेयरिंग, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed, always caring about in the body the dying of Jesus so that the life of Jesus also may be manifested in the body.
और फिर वो 8 से 10 वचन में कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो.
सो इट इज नॉट अ वेरी ब्रॉड वे वेयर आई कैन इजीली वॉक.
और इसलिए ये कोई चौड़ा या बड़ा मार्ग नहीं है जहां मैं आसानी से चल पाऊंगा.
If I have to go to the way of humility, if I have to get the nature of Christ in me,
अगर मुझे नम्रता के मार्ग में चलना होगा, अगर मैं चाहता हूं कि मसीह का स्वभाव मुझ में आ जाए,
I have to deny myself.
मुझे अपने आप का इनकार करना होगा.
Like it says here that always carrying the death of Jesus, dying of Jesus, so that the life of Jesus may be manifest.
जैसे यहाँ लिखा है कि निरंतर यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरना ताकि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो.
सो दैट इज इन अ प्रैक्टिकल लाइफ आई डोंट रिएक्ट टू माय व्हाट माय फ्लेश वांट्स टू डू.
और हमारे व्यवहारिक जीवन में मैं उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देता जो मेरा शरीर, मेरा देह करना चाहता है.
आई एम नॉट रिएक्टिंग बिकॉज समबडी प्रोवोक्ड मी.
मैं इसलिए प्रतिक्रिया नहीं देता कि किसी ने मुझे उकसाया,
और somebody insulted me,
या किसी ने मेरा अपमान किया,
और somebody rose their voice was high, so I also have to raise my voice,
या किसी ने मुझसे ऊंची आवाज से आवाज चढ़ाकर बात की, इसलिए मुझे भी अपना आवाज चढ़ाना होगा.
तो इट इज इजी टू रिएक्ट इन दैट वे.
और इस प्रकार प्रतिक्रिया देना आसान है.
सो इफ आई कीप ऑन रिएक्टिंग इन दैट वे, आई विल नेवर हैव दैट इनर लाइफ ऑफ जीसस विल नेवर कम आउट.
और अगर मैं ऐसे ही प्रतिक्रिया देते रहूंगा तो वो यीशु मसीह का जो अंदरूनी जीवन है वो मुझसे कभी बाहर नहीं आएगा.
It will be like that we read in that seed which fell on a hard ground. It will be happy when it hears the word.
ये उस बीज के समान होगा जो कठोर जमीन पर गिरी और वो जब वचन को सुनता है तो वो प्रसन्न होता है, खुश होता है.
But when it comes to the temptations and the trials of life, it is not ready to deny its own will.
पर जब बात आती है जीवन के प्रलोभनों के बारे में, परीक्षाओं के वजह से, ब्रदर कैन यू रिपीट,
द लास्ट इज नॉट एबल टू डिनाई इट्स ओन विल.
और इन कठिन परिस्थितियों में वो अपने ही स्वयं की इच्छा को इनकार नहीं कर पाता.
सो दैट्स व्हाई ओनली व्हाट कम्स आउट इज आवर ओन सेल्फ लाइफ.
और इसलिए केवल हमारा स्वयं का जीवन ही बाहर आता है.
मे बी आफ्टर सम इयर्स ऑफ सिटिंग इन द चर्च वी कैन हैव अ रिफाइंड सेल्फ लाइफ.
शायद कलीसिया में कुछ साल बैठे रहने के बाद हमारा स्वयं का जीवन थोड़ा सुधर जाता है.
लाइक इट इज नॉट रियल ट्रांसफॉर्मेशन बट इट इज समथिंग व्हिच आई हैव प्रिटेंडेड एंड आई हैव जस्ट पुट अ फेस दैट आई एम समथिंग गुड.
ये सच्चा बदलाव, सच्चा रूपांतरण नहीं है, पर मैंने ये दिखावा किया है और ये सीखा है कि मैं थोड़ा बेहतर बन गया हूँ.
दैट मीन्स इन माई हार्ट देर विल बी ऑल दिस एंगर, इरिटेशन, मर्मरिंग, बिटरनेस.
इसका मतलब मेरे हृदय में तो ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ा, ये कुड़कुड़ाना और ये कड़वाहट होगी।
But outside, I am having this, I am saying all the right words.
पर बाहरी तौर पर मैं सारे सही शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ।
But in my secret life, I know that there is nothing good, that there is nothing, life of Jesus is not flowing in outside.
पर मेरे गुप्त जीवन में मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह का जीवन मुझ में से नहीं बह रहा।
I am just having a form of godliness.
मेरे पास केवल भक्ति का भेष मैंने रखा है।
So that is why I need to have that desire and that real thirst, like we heard, that to get that life of Jesus.
और इसी वजह से मेरे पास इच्छा होनी चाहिए, सच्ची प्यास होनी चाहिए कि मैं यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करूं।
Because I cannot produce it myself.
क्योंकि मैं अपने आप से उसे उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा।
I have to come to Jesus and say, Lord, I cannot do it.
मुझे यीशु के पास आकर कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता।
I have tried many times and I failed.
मैंने कई बार कोशिश की है और मैं असफल रहा हूँ।
What is coming out is my own own self-righteousness.
जो मुझसे बाहर आ रहा है वो मेरी स्वयं की धार्मिकता है केवल।
It says in 2 Corinthians chapter 12.
दूसरा कुरिन्थ इसके 12वें अध्याय में लिखा है।
Verse 7.
उसके 7वें वचन में।
Another incident where Paul was humbled.
एक और घटना जहां पौलुस नम्र किया गया।
Because of the surpassing greatness of the revelation, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan, to torment me, to keep me from exalting myself.
इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं।
See, Paul was so much used by God.
पौलुस का परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया था।
So he had tremendous danger that he would become proud and he would just fall away.
और इसलिए पौलुस के सामने बड़ा खतरा था कि वो बहुत घमंडी हो जाएगा और वो गिर जाएगा।
And there are many people we know throughout the centuries or even now who are just falling away because of pride.
और इन सारे शताब्दियों में और आज भी हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो घमंड की वजह से गिर जाते हैं।
So we also see that some people who stand before Jesus on the final day.
और हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग जो अंतिम दिन में यीशु के सामने खड़े होंगे।
And they say, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Have we not cast out demons? Have we not done miracles, many miracles and all those things?
और वो कहते हैं, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से कई चमत्कार नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला?
So those are all people who were so lifted up because of the things they did.
और ये सारे वो लोग थे जो कुछ उन्होंने किया उस वजह से वे बहुत ऊंचे अपने हृदय में हो गए थे, बड़े हो गए थे।
But like Jesus said, I never knew you.
पर जैसे यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना।
That means they also did not know Jesus.
इसका मतलब वे भी यीशु को नहीं जानते थे।
They all see we should not see all these people who preach and get so much honor.
और हमें जो ये लोग प्रचार करते हैं और जिनको बहुत आदर मिलता है, इन लोगों को नहीं देखना है।
Or people who sing and get so much honor.
या जो लोग गीत गाकर बहुत आदर बटोरते हैं।
Or do anything so that they will be in a limelight and people will follow them or they will get so much honor. We should not be, our hearts shouldn't be drawn to that.
और या ऐसे लोग जो कई चीजें करते हैं ताकि लोगों से वो आदर प्राप्त करें, और ऐसे लोगों के प्रति हमारा हृदय नहीं खींचना चाहिए, उनके पीछे नहीं जाना चाहिए।
Because the spirit there is totally against or totally opposite to the spirit of Christ.
क्योंकि वहां जो आत्मा है वो मसीह की आत्मा के बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल विरोध में है।
So if we keep on watching that and which we keep on admiring that spirit will slowly seep into us.
और अगर हम वही देखते रहेंगे, अगर हम उसी की सराहना करते रहेंगे, तो वो आत्मा हमारे अंदर आने लगेगी।
So just because somebody is preaching a message so powerfully, we should not be so drawn to it.
और इसलिए केवल इस वजह से कि कोई व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली तौर पर वचन को बांट रहा है, प्रचार कर रहा है, हमें उसके प्रति नहीं आकर्षित होना है।
Because our spiritual growth depends on the what we feed into ourselves.
क्योंकि हमारी आत्मिक उन्नति उस पर निर्भर है कि हम अपने आप के अंदर क्या बटोर रहे हैं, क्या खा रहे हैं।
If I am constantly with proud people, I'll become proud.
अगर मैं निरंतर घमंडी लोगों में रहता हूं तो मैं घमंडी बन जाऊंगा।
Because I will be influenced by what they say and how they boast and how they talk and everything.
क्योंकि वो क्या कहते हैं, वे कैसे घमंड करते हैं, उनके बातचीत का ढंग क्या है, उन्हीं बातों से मैं प्रभावी हो जाऊंगा।
But if I spend time with Jesus, if I desire him and if I seek his fellowship.
और अगर मैं यीशु के साथ समय बिताता हूं, अगर मैं यीशु की चाहत रखता हूं और उसके संगति की लालसा रखता हूं तो
I'll become more and more low and lower and more humble.
तो फिर मैं ज्यादा ज्यादा नीचे जाने लगूंगा, अधिक और अधिक नम्र बनूंगा.
See, Paul had this tormenting thing in his flesh.
और पौलुस को ये तकलीफ देने वाली, पीड़ा देने वाली एक चीज उसके शरीर में थी.
So he had, so when he prayed to God, it says in verse 8, concerning this, I implored the Lord 3 times that it might leave me.
और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, 8वें वचन में लिखा है कि मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए.
And God answered it.
और परमेश्वर ने उसे उत्तर भी दिया.
He said that my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.
परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, 9वां वचन, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है.
So that was God's answer.
और ये परमेश्वर का उत्तर था.
Now we see what Paul reacted to what God answered.
अब हम देखते हैं पौलुस ने कैसी प्रतिक्रिया दी जब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया तब.
When Paul said, when God said that my power will be perfect in you when you are very weak.
जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तू बहुत निर्बल होता है तो मेरी सामर्थ तुझ में सिद्ध हो जाएगी.
See how Paul reacted.
देखिए पौलुस की क्या प्रतिक्रिया थी.
And he says, most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses.
और वो कहता है इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर मैं घमंड करूंगा.
So that is what made Paul humble, but not just what God dealt with him.
और इस बात ने पौलुस को वाकई नम्र बनाया. ये नहीं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ किया था.
But when something happened in his life, he had a habit of going to God and asking him.
पर जब उसके जीवन में कुछ होता था तो पौलुस की आदत थी कि वो परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से कुछ मांगता था.
And he could hear what God wants, God's response was.
Brother, and he could hear?
He could hear what God's response was to what he asked of him.
और जब कभी वो परमेश्वर से कुछ मांगता था तो पौलुस सुन सकता था कि परमेश्वर उसे क्या जवाब दे रहा है.
And then when God responded in the way which he initially did not pray for,
और पौलुस ने जैसे प्रार्थना की थी उससे अलग तरीके से जब परमेश्वर उसे उत्तर देता था,
he says, oh, that is what God wants, then I will most gladly take that.
फिर पौलुस कहता है, अच्छा परमेश्वर तो ये चाहता है, फिर मैं बड़े आनंद से इसका स्वीकार करूंगा.
And I will boast about my weaknesses.
और मैं अपने निर्बलताओं में घमंड करूंगा.
Because that is where I can be really humbled.
क्योंकि वहां मैं वाकई सचमुच नम्र हो सकता हूं.
And that is where the life of Jesus or the power of Christ will dwell in me.
और वही यीशु का जीवन या मसीह की सामर्थ मेरे अंदर रहेगी.
If I am always comfortable and if I all have all the riches and everybody is respecting me and if I am a great apostle, I will not learn this humility of Jesus.
अगर मेरे पास सारे ऐशो आराम है, मैं बहुत धनवान हूँ, सब मेरा आदर कर रहे हैं और मैं यीशु का बड़ा प्रेरित हूँ, तो फिर मैं ये सारे चीजों में नम्र नहीं होऊंगा.
And that is how God opened the eyes of Paul.
और इसी तरीके से परमेश्वर ने पौलुस की आंखें खोल ली.
Then he says in verse 10, therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong.
और वो 10वें वचन में कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ.
So this is one test to see whether I am becoming bigger or smaller.
और ये एक परीक्षा है देखने के लिए कि क्या मैं बड़ा होते जा रहा हूँ या छोटे होता जा रहा हूँ.
Like it says here, when somebody insults me, am I well content?
जैसे यहाँ लिखा है, जब मेरा अपमान होता है तो क्या मैं प्रसन्न, क्या मैं इंग्लिश में लिखा है संतुष्ट हूँ?
Or will I even immediately get offended and my face will be fallen away?
क्या मैं तुरंत बुरा मान जाता हूँ और मेरा जो चेहरा है वो भी एकदम दुखी हो जाता है?
If I become offended because I am very big in my own eyes.
अगर मुझे बुरा लगता है तो इसका मतलब मैं अपनी ही आंखों में बहुत बड़ा हूँ.
I am somebody very great and nobody should say anything against me.
मैं कोई बहुत महान व्यक्ति हूँ और मेरे खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहना चाहिए.
And if somebody says something, I may retaliate and if I don't retaliate, I will feel offended.
और इसलिए अगर कोई मुझसे कुछ कहे तो या तो मैं उलट उसे जवाब दे दूंगा और अगर मैं उसे वापस से जवाब नहीं देता तो फिर मैं अंदर ही अंदर मुझे बुरा लगेगा.
So if either of these reactions are in me, I am very big.
और अगर मेरी इन दोनों में से कोई भी प्रतिक्रिया हुई तो मैं बहुत बड़ा हूँ.
But we have to come out of that and come to a place where Paul came.
पर हमें इससे बाहर निकलकर उस स्थान में आना है जहाँ पौलुस था.
Where he could say that I am well content with weaknesses, with insults, with distresses. I am totally content.
जहां वो कहता है, हिंदी में प्रसन्न लिखा है पर इंग्लिश में लिखा है कि मैं निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में प्रसन्न नहीं बल्कि बहुत संतुष्ट हूं.
So that is something which we should desire in our hearts.
और ये ऐसा कुछ है जिसकी लालसा हमें अपने हृदयों में करनी है.
Another thing we see when we are big in our own eyes is.
एक और बात जो हम देखते हैं जब हम अपनी ही आंखों में बहुत बड़े होते हैं.
Is we when somebody appreciates us or says something good about us, we feel very lifted up.
जब कोई हमारी तारीफ करता है, सराहना करता है या हमारे विषय में कुछ अच्छा कहता है तो हम बहुत हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ऊंचे हो गए हैं.
Yeah, Jesus said in John that I do not receive glory from men.
और यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार में कहा कि मैं मनुष्यों से आदर या महिमा प्राप्त नहीं करता.
So that is what I should have in my heart.
और मेरे हृदय में यही होना चाहिए.
I do not what I have in Corinthians there's a verse which says what have I which I did not receive.
और कुरिन्थियों में एक वचन है, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैंने प्राप्त नहीं किया हो.
And if I received everything then why I should boast.
और अगर मैंने सभी कुछ प्राप्त ही किया है तो फिर मैं घमंड क्यों करूं.
For example if somebody tells me what all you have in your house.
उदाहरण के तौर पर अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आपके घर में क्या क्या है.
I will say that I have a refrigerator but that was a gift and I have a fan which somebody gifted me. I have a car which somebody gifted me and everything is gifted to me. I did not earn anything.
और फिर अगर मैं उसे कहूं कि भाई मेरे घर में एक फ्रिज है पर किसी ने मुझे ये तोहफा दिया था, मेरे पास एक फैन भी है वो भी किसी ने तोहफा दिया है, मेरे पास एक गाड़ी है वो भी किसी ने मुझे भेंट दी है, अगर सारी चीजें ये तोहफे के तौर पर मुझे मिली है तो.
Even the job I earned, job I got, is somebody just had mercy on me and just gave me that job.
और मैं जो नौकरी भी कर रहा हूँ, किसी ने मुझ पर दया की और मुझे वो नौकरी दे दी.
And the intelligence I have is somebody's gift.
और जो बुद्धिमानी मेरे पास है, वो भी किसी ने मुझे एक वरदान के तौर पर दी है.
And any change in my life is also God's gift.
और मेरे जीवन में कोई भी बदलाव भी हुआ हो, तो वो परमेश्वर का दान है.
If I really understood that, I will not be proud.
अगर इन बातों को मैं सचमुच समझ गया हूं तो मैं घमंडी नहीं रहूंगा.
So in the life of Job, initially he was such a big person.
और अय्यूब के जीवन में शुरुआत में तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति था.
And he could say so many things chapter after chapter.
और अध्याय के बाद अध्याय वो कई बातें कह सकता था.
But when he really saw God,
पर जब उसने सचमुच परमेश्वर को देखा.
He says in Job 44.
वो अय्यूब 42 में कहते हैं.
40 verse 4.
Oh sorry. अय्यूब उसके 40 अध्याय के 4 वचन में वो कहता है.
Behold, I am insignificant. What can I reply to you?
और वो कहता है, देख, मैं तो तुच्छ हूँ. मैं तुझे क्या उत्तर दूँ?
So he became small in his own eyes.
वो अपनी ही आँखों में छोटा हो गया.
Once upon a time, he was very big.
एक समय वो बहुत बड़ा था.
But he became small.
पर वो छोटा बन गया.
In the same way, John also says, John the Baptist, that he should increase, then I should decrease.
बिल्कुल ऐसे ही योहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है कि वो बढ़े ताकि मैं घटूं ताकि वो बढ़े.
We read about the humility of Jesus from Philippians 2 verses 3 to 8.
फिलिपियो 2 उसके 3 से 8 में हम यीशु की नम्रता के विषय में पढ़ते हैं.
Though he was God, he came down and became a man.
यद्यपि वो परमेश्वर था, वो नीचे आकर एक मनुष्य बना.
And as a man, he became a slave.
और मनुष्य होकर वो एक गुलाम बना.
And as a slave, he became a criminal.
और गुलाम होकर भी वो एक अपराधी बना.
And that is how Jesus humbled himself.
और इस प्रकार यीशु ने अपने आप को नम्र किया.
And that is how we also need to look at Jesus and receive that humility of Jesus more and more.
और इसी प्रकार हमें यीशु को देखना है, उससे उस नम्रता को अधिक और अधिक मात्रा में स्वीकार करना है.
आमीन.
आमीन.